मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 12 फरवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि दो दिन के इस विश्राम ने डेफिनेटली आप सबको एक नई ऊर्जा से भर दिया होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह रही है जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीने में। मित्रों, ऊर्जा तो एक एहसास है, जब आप अपने एहसास को बेहतर बना करके रखते हैं तो ऊर्जा अपने आप आती रहती है, और अगर मन में निराशा का भाव है, उदासी का भाव है, तो डेफिनेटली फिर ऊर्जा आसपास भी नहीं फटकती। और मुझे इतना तो यकीन है कि आप सब मेरे वे प्रिय श्रोता जो लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं, शायद उनके मन से निश्चित रूप से जो निराशा का भाव है वो दूर होना ही चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मैं मानकर चलूंगा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे इस बात पर फिर से गंभीरता से विचार करना होगा कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। तो मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबसे बहुत हटकर एक विषय पर बात करना चाह रहा हूं, और मुझे यह विषय सुझाया है मेरे आप में से ही एक प्रिय श्रोता ने, और मैं आज बात करने जा रहा हूं दोस्तों कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो सैनिक हैं, कैसे हमें उन्हें रिगार्ड देना चाहिए, मैं आज इस पर थोड़ी सी बात आप सबसे करना चाहूंगा। दोस्तों, हम टीवी पर देखते हैं, हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, सोचकर देखिए कि जब हम देखते हैं कि एक 25-30 साल का जवान लड़का सरहद पर मारा गया, और मारा क्यों गया, इसलिए कि हम सब बड़े सुरक्षित तरीके से अपने अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, और वह जो मारा गया है उनका भी परिवार है, उसका भी परिवार है, उसका परिवार चैन की नींद नहीं सो रहा है, क्योंकि उसके पति, उसके पापा, उसके बेटे, उसका भाई सरहद पर रात रात भर जग कर, यूं कह लीजिए कि सेना के रूप में हमारी देखभाल कर रहा है, हमारी चौकीदारी कर रहा है। सोच कर देखिए, क्या ये छोटी सी बात लगती है? मित्रों, सामान्यतया मैंने देखा है कि अगर मैं अपने पुराने समय को याद करना चाहूं तो गर्मियों के दिन में जब हम लोग ट्रेन में सफर करते थे तो जो रेलवे स्टेशन होता था उस पर बहुत से सैनिक अपना बिस्तर लिए हुए, ट्रंक लिए हुए, गर्मी में पड़े हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बहुतों का रिजर्वेशन नहीं होता था, और जैसे ही ट्रेन आती थी वो अपना ट्रंक चढ़ाते थे, अपना बिस्तर चढ़ाते थे, जिनका रिजर्वेशन होता था वो वहां बैठ जाते थे, बाकी ट्रंक पर बैठे रहते थे, सोते रहते थे, और इस तरीके से करके अपने नए स्थान तक पहुंचते रहते थे। और मैंने महसूस किया कि उस दौरान जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या जब वो ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो हम लोगों के मन में कुछ इस तरह की भावना नहीं आती थी कि ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि ऐसे ही लगता था कि यार ये क्या है, ये पड़े हुए हैं, देखो बड़े बड़े ट्रंक लेकर के चल रहे हैं। उस समय बाल बुद्धि थी, समझ नहीं थी, या कह लीजिए कि समझ अगर होगी भी तो शायद उस समझ को हम अपनी संवेदनाओं से नहीं जोड़ पाते थे। और मुझे लगता है कि जब तक हमारी समझ में संवेदनाएं न जुड़े तब तक बात बनती नहीं है। मित्रों, हम सब में से कितने लोग हैं, देखिए हम सब चाहते हैं कि हम बहुत सुरक्षित रहें, हमारा देश अखंड रहे, हमारा देश स्वतंत्र रहे, हम सब चाहते हैं। जब हमारी हम पर कोई मुसीबत आए तो कोई हमारी मदद करने के लिए आए, और आप देखते हैं कि जब बाढ़ होती है, कहीं आग लग जाती है, जब भूकंप आते हैं, जब तूफान आते हैं, तो हमें बचाने के लिए कौन सामने आता है? और वो सामान्य रूप से बचाना नहीं है, अपने जान को जोखिम में डालकर बचाना है। वैसे तो चलिए ऐसे मौकों पर बचाने के लिए दूसरे लोग भी मौजूद रहते हैं, दूसरी और भी एजेंसीज काम कर रही होती हैं, लेकिन ऐसे काम जिसमें उन करने वाले की जान को ही सबसे ज्यादा रिस्क है, वो करने वाले लोग आर्मी के होते हैं और हमें बचाते हैं। अगर हमारा जीवन बच जाता है तो ये दुनिया हमारी होती है, और अगर हम किसी वजह से नहीं बच पाते तो हमारे लिए दुनिया शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि वो हमें बचाकर हमारी दुनिया हमारी गोद में डालते हैं, वो हमें हमारी दुनिया सौंपते हैं। और उसी बचाने के प्रोसेस में कि वो हमें अपनी दुनिया सौंपें, खुद की दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सोच कर देखिए, ये भी सोच करके देखिए कि जब वो सरहद पर होते हैं तब किस तरीके से उनकी पत्नियां, उनके माता पिता, उनके भाई बहन अकेले घर में रहते होंगे, किस तरीके से वो सच में उस बच्चे के अभाव में त्योहार मनाते होंगे। उनके लिए होली, उनके लिए दिवाली, उनके लिए ईद, उनके लिए क्रिसमस डे किस तरीके से कहीं ना कहीं अधूरे अधूरे होते होंगे, उनमें कितना अधूरापन लगता होगा। अगर घर में कभी मिठाइयां बन रही हैं, अगर सेवइयां बन भी रही हैं, तो क्या सच में उन्हें स्वाद आता होगा? मुझे लगता है कि मित्रों, ठीक है जिंदगी की मजबूरियां होती हैं, जिंदगी चलती ही रहती है, लेकिन स्वाद में तो निश्चित रूप से फर्क पड़ जाता होगा। फिर मुझे तो कभी कभी सोच करके अंदर से बहुत विचित्र सा लगने लगता है कि उनकी पत्नियां जो ब्याह कर आई थी, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने दिनों तक फोन पर बातें नहीं हो पा रही हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग प्रोबेशनर हुआ करते थे और मसूरी में ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय मैं 84-85 की बात बता रहा हूं, तो कुछ समय के लिए आपको ट्रैकिंग करते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है और कुछ दिनों के लिए उस आर्मी के साथ रहना पड़ता है। तो मुझे याद है कि हम लोगों का जो ग्रुप था वो लंका में रह रहा था। लंका ये श्रीलंका वाला नहीं, उत्तरकाशी से आप और ऊपर चलते चले जाएंगे, बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र, वहां की खंडकों में कुछ समय हम लोग रहे थे, कुछ दिन रहे थे, और वहां के सैनिकों के जीवन को देख करके हम लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि ये सैनिक, मतलब वहां के पानी को आप टच कीजिए, मैं भरी गर्मी की बात बता रहा हूं, पानी को उंगली से टच कीजिए और ऐसा लगेगा जैसे आपकी उंगली सुन्न हो गई हो, वहां वे रह रहे हैं और हम जो हैं वो सिविल सर्वेंट बन करके बहुत ही सम्मान, बहुत ही सुविधाजनक जिंदगी जीना चाहते हैं। वो वहां रह रहे हैं, असुविधा में रह रहे हैं, हम सुविधाजनक जिंदगी जीना चाहते हैं, और हम सुविधाजनक जिंदगी को जी सकें इसके लिए हमारे ही देश के कुछ नौजवान होते हैं जो अपनी जिंदगी को असुविधाजनक स्थितियों में डाल दिए हुए होते हैं, झोंक चुके होते हैं, लेकिन कभी हम इन तरीकों से उनकी जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाते। उनकी पत्नी है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों के पिता उनके पास नहीं रह रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, देखते हैं कि सभी के माता पिता स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, लेकिन ये बच्चे मिस करते हैं कि उनके पिता नहीं होते, उनके माँ के साथ या तो चाचा होते हैं या दादा होते हैं या दूसरे कोई होते होंगे, या अकेली माँ जाती होगी, लेकिन क्या बच्चे का जो बाल मन है, जो इमोशनल जो उसके विचार हैं, जो भावना है, क्या उसको समझाया जा सकता है, क्या उसको संतुष्ट किया जा सकता है? और अगर पत्नी के पास कोई बहुत बड़ा पारिवारिक सपोर्ट नहीं है तो सोच करके देखिए कि वो चीजों को कैसे मैनेज करती होंगी, कैसे करती होंगी मैनेज, छोटी छोटी चीजों की जरूरत है घर परिवार के लिए, उसके लिए वो अकेली ही जूझ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरहद पर हमारा सैनिक अकेले नहीं जूझ रहा है, अकेले का मतलब इंडिविजुअल रूप में, ग्रुप में ही जूझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहां अकेला है, बल्कि उनका परिवार जो यहां जूझ रहा है अपने गांव में रह करके, अपने देश में रह करके, अपने शहर में रह करके, अपने कस्बे में रह करके, वो भी कहीं ना कहीं वो सरहद के लिए ही जूझ रहा है, सरहद की सुरक्षा के लिए ही जूझ रहा है। और मित्रों, जब कभी हमको निर्णय लेना पड़े कि हम अपने बच्चे को क्या आर्मी में भेजने के लिए तैयार हैं, तब आप सोचिए जरा सा कि क्या लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आर्मी में जाएं, ज्यादातर लोगों के बच्चे नहीं चाहते कि वो आर्मी में जाएं। हाँ, एक बात तो मैंने जरूर देखी है कि जो आर्मी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनमें ये बड़ा दमखम रहता है कि नहीं, हमारे बच्चे आर्मी में ही जाएंगे, उसको बड़े प्राइड के साथ लेते हैं। लेकिन सामान्य नागरिक, उसमें कुछ लोग तो निकल जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है आर्मी में जाएंगे, लेकिन सामान्यतया ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम अगर आर्मी की बात ना करें तो आप इसलिए हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, वो जोखिम वाले काम में ना जाएं। माता पिता को यही अच्छा लगता है कि उनके बच्चे सुरक्षित, अच्छा, शानदार, इत्मीनान का जीवन जिए। तो इन नौजवानों के बारे में सोचें, फिर इन नौजवानों के माता पिता के बारे में सोचे, पत्नी के बारे में सोचे, इनके अपने बच्चों के बारे में सोचे, और जब हम इन सबको संवेदनाओं से जोड़कर और इन पर विचार करते हैं मित्रों, तो सच पूछिए दिमाग हिल जाता है, दिमाग हिल जाता है और आवाज नहीं निकलती है और अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लगने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन यही जवान लड़का जो ऊर्जा से भरा हुआ है एक ताबूत में बंद होकर के अपने गांव पहुंच जाता है। गांव वालों ने, उनकी पत्नी, मां बाप, बच्चों ने, सब ने उसको विदा किया था, हंसते गाते विदा किया था। और वो किस रूप में लौट रहा है? मित्रों, जाने वाला चला गया। फिर आगे सोचिए कि जाने वाला तो चला गया, अब उसके लिए ठीक है, दुनिया शून्य है, लेकिन जो जीवित हैं उनके लिए कैसी ये दुनिया है? उनके लिए तो ये दुनिया होते हुए भी नहीं है, उनको तो बिल्कुल वैक्यूम, जो उनकी उनका जीवन बचा हुआ है वो तो पूरा का पूरा जीवन एक खालीपन के जबरदस्त सन्नाटे में गुजर रहा है। खालीपन, मां बाप के लिए बेटे का खालीपन, पत्नी के लिए पति का खालीपन, बेटी बेटियों के लिए पिता का खालीपन। सोच करके देखे मित्रों, क्योंकि खासकर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो सही मायने में वो जो काम कर रहे हैं हमारे सैनिक, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके महत्व को हम आंक सकेंगे, उनका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। नहीं तो फिर यही लगता है कि वो एक नौकरी कर रहे हैं। बट मित्रों, ये भी दूसरी भी नौकरियां कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने इसे चुना होगा। इनको जबरदस्ती तो भर्ती किया नहीं गया है कि कोई इमरजेंसी लगा करके भर्ती की, कोई आदेश जारी कर दिया गया है कि अनिवार्य है सैन्य सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने चुना, लेकिन उस चुनने के पीछे मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ कोई रोजगार पाना ही था, जैसा कि बातचीत के तहत कुछ लोग कह भी देते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जोखिम लेने की भावना है, देश की रक्षा की एक प्रबल और उत्कट इच्छा है, तभी वह इन क्षेत्रों में जाता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम सब ये संकल्प लें, अगर हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो दो काम तो कर ही सकते हैं। पहला तो यह कि जहां भी हमें सैनिक दिखाई दे, रैंक की कोई बात नहीं है, वहां हम उसका सम्मान करें, उठकर उसे सम्मान दें, ताकि वो अपने देश के बारे में ये प्राइड कर सके कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं, और अपने अंदर एक जबरदस्त किस्म का आत्मविश्वास जागृत कर सके कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। और दूसरी बात यह है कि जहां भी हमें ऐसे जरूरतमंद अपने सैन्य परिवार के सदस्य दिखाई देते हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए आगे आए, उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मान करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। मुझे लगता है कि मित्रों, सामान्य नागरिक के रूप में शायद ऐसा ही करके हम अपने सैनिकों के ऋण से थोड़ा सा उऋण हो सकते हैं। तो मित्रों, आज की बात मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा। नमस्कार।